एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब और कह सकते हैं एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसने महिलाओं के काम करने के तरीके और उनकी महत्वाकांक्षाओं पर एक वैश्विक बहस छेड़ दी थी।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं शेरिल सैंडबर्ग की और उनकी 2013 में आई किताब लीन इन, विमेन वर्क एंड द विल टू लीड की।
लीन इन, ये टाइटल ही अपने आप में काफी कुछ कहता है।
सही कहा। और ये किताब महज कोई संस्मरण या कोई एकेडमिक विश्लेषण नहीं थी। इसने लाखों लोगों को, खासकर महिलाओं को, सोचने का एक नया नजरिया दिया अपने करियर के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में।
और ये नजरिया देने वाली थी शेरिल सैंडबर्ग खुद, जो उस समय फेसबुक की सीईओ थी, मतलब सिलिकन वैली की सबसे जानी मानी और सबसे शक्तिशाली आवाजों में से एक।
बिल्कुल। और उन्होंने अपने अनुभवों और काफी रिसर्च के आधार पर कुछ बहुत ही असहज लेकिन जरूरी सवाल उठाए थे।
हाँ, और वो समय भी ऐसा था, आप सोचिए अमेरिका में लगभग आधी वर्कफोर्स महिलाएं थीं। लेकिन जब आप टॉप पर देखते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ लेवल पर, तो महिलाएं महज 4%।
सिर्फ 4%, ये आंकड़ा चौंकाने वाला था।
बिल्कुल। तो सैंडबर्ग ने यही पूछा, भाई ऐसा क्यों है? क्या सारी दिक्कत बाहरी है, मतलब भेदभाव, सिस्टम की प्रॉब्लम, या कुछ अंदरूनी रुकावटें भी हैं जो महिलाएं खुद महसूस करती हैं?
और यहीं से वो लीन इन का आइडिया, वो विचार सामने आया,
आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना।
हाँ, कि महिलाओं को आगे बढ़कर मौके लपकने चाहिए, टेबल पर अपनी जगह बनानी चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए।
इसने तो मतलब तूफान खड़ा कर दिया होगा, कुछ लोग बहुत प्रेरित हुए होंगे।
बहुत प्रेरित हुए, लेकिन उतनी तीखी आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो विक्टिम ब्लेमिंग जैसा है, कि आप महिलाओं पर ही जिम्मेदारी डाल रही हैं सिस्टम की खामियों की।
ये बहस तो आज भी चलती है।
बिल्कुल, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इसने एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू की कार्यस्थल में जेंडर इक्वालिटी पर, और उस बातचीत के मायने आज भी उतने ही हैं।
तो चलिए इसी बातचीत को आज थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। शेरिल सैंडबर्ग की कहानी, उनके विचार, उनकी यात्रा, इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? उनके बचपन से।
हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। शेरिल सैंडबर्ग का जन्म 1969 में फ्लोरिडा में हुआ था, एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में। उनके पिता आंखों के डॉक्टर थे और माँ फ्रेंच पढ़ाती थी, हालांकि बाद में वो हाउसवाइफ बन गईं।
माहौल कैसा था घर का?
माहौल काफी पढ़ा लिखा था, शिक्षा पर, मेहनत पर और समाज सेवा पर बहुत जोर था, और शेरिल में बचपन से ही वो लीडरशिप वाले गुण दिखने लगे थे।
अच्छा, जैसे?
जैसे वो स्कूल में आगे रहती थीं, चीजें ऑर्गेनाइज करती थीं। लेकिन यहीं एक दिलचस्प बात हुई, इन्हीं गुणों की वजह से उन्हें अक्सर लोग बॉसी कहने लगते थे।
बॉसी?
हाँ, ये शब्द लड़कियों के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, जबकि लड़कों को लीडर कहा जाता है।
बिल्कुल, शायद ये लिंग आधारित जो अपेक्षाएं होती हैं ना
जी,
उनसे उनका ये पहला सामना था। एक और किस्सा वो बताती हैं, अपने छोटे भाई का।
हाँ,
वो गणित के किसी सवाल में उनसे मदद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसका कहना था तुम तो सिर्फ एक लड़की हो।
अरे, तो ये छोटी छोटी बातें ही उनके मन में जेंडर रोल्स और अपेक्षाओं को लेकर एक समझ बना रही थी बहुत शुरू से ही।
फिर वो हार्वर्ड पहुंची इकोनॉमिक्स पढ़ने।
हाँ,
लेकिन सुना है वहां शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही।
हाँ, पहली ही इकोनॉमिक्स की परीक्षा में उन्हें सी ग्रेड मिला। अब हार्वर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था।
जाहिर है।
लेकिन इससे उन्होंने दो बहुत जरूरी बातें सीखी, एक तो रेजिलियंस, मतलब हार ना मानना, और दूसरा मदद मांगने में हिचकनाना नहीं चाहिए।
ये बहुत जरूरी सबक है, मदद मांगना।
हाँ, और यहीं हार्वर्ड में उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर लैरी समर्स से, जो आगे चलकर उनके करियर में एक बहुत बड़े मेंटर साबित हुए।
वही लैरी समर्स जो बाद में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी भी बने।
जी हाँ, वही। उन्होंने सैंडबर्ग की काबिलियत को पहचाना और उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। ये मेंटरशिप बहुत अहम थी उनके लिए।
हार्वर्ड के बाद?
हार्वर्ड के बाद वो वर्ल्ड बैंक गईं, फिर वापस हार्वर्ड आईं बिजनेस स्कूल से एमबीए करने, और एमबीए के दौरान उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया।
क्या पैटर्न?
उन्होंने देखा कि क्लास में जो महिला छात्र थीं, वो अक्सर पीछे बैठती थीं, कम सवाल पूछती थीं, और जब सफल होती थीं तो उसका क्रेडिट किस्मत या दूसरों की मदद को देती थीं।
अच्छा।
जबकि लड़के अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटते थे, वो खुलकर अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेते थे। ये देखकर सैंडबर्ग को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये चीजें बाद में लीन इन के विचारों का आधार बनी।
एमबीए के बाद फिर सरकारी नौकरी?
हाँ, वो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट पहुंची। पहले रॉबर्ट रूबिन और फिर लैरी समर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में वो पावर के इतने करीब थी, बड़े बड़े फैसले होते देख रही थी।
ये तो कमाल का अनुभव रहा होगा।
बिल्कुल, लेकिन फिर आया एक बड़ा ट्विस्ट, सिलिकन वैली।
अच्छा, ट्रेजरी से सीधा टेक इंडस्ट्री में?
हाँ, 2001 में गूगल ज्वाइन करने का फैसला। और उस समय गूगल, मतलब आज वाला गूगल नहीं था, एक उभरता हुआ स्टार्टअप था। सब ने कहा कि ये बड़ा जोखिम भरा कदम है, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़कर एक अनिश्चित सी टेक कंपनी में जाना।
यहीं पर वो फेमस रॉकेट शिप वाली सलाह आई थी ना?
न सिर्फ वो गूगल में शामिल हुई, बल्कि गूगल का जो पूरा एडवर्टाइजिंग बिजनेस है उसको खड़ा करने में, उसे आज के इस विशाल रूप तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा।
गूगल के बाद फिर फेसबुक 2008 में?
हाँ, मार्क जुकरबर्ग उन्हें फेसबुक ले आए बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO।
और फेसबुक में तो उनका काम जबरदस्त रहा। उन्होंने फेसबुक को एक कॉलेज नेटवर्क से दुनिया की सबसे बड़ी टेक और मीडिया कंपनियों में से एक बनाने में जबरदस्त भूमिका निभाई।
सही कहा, ये शायद उनके करियर का पीक था कह सकते हैं।
और इसी दौरान 2013 में उन्होंने लीन इन पब्लिश की।
हाँ, और ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं रही, ये कल्चरल फिनोमेना बन गई। बेस्ट सेलर तो हुई ही, लीन इन सर्कल्स बने, फाउंडेशन बना, सैंडबर्ग एक ग्लोबल थॉट लीडर के तौर पर उभरी।
लेकिन इसी सफलता और शोहरत के बीच 2015 में उनके साथ एक बहुत दुखद हादसा हुआ।
हाँ, उनके पति डेव गोल्डबर्ग का अचानक निधन हो गया मेक्सिको में छुट्टियों के दौरान।
ये तो बहुत बड़ा सदमा रहा होगा।
बहुत बड़ा, व्यक्तिगत तौर पर भी और प्रोफेशनल तौर पर भी। इस हादसे ने उन्हें जिंदगी, काम और जो ये लचीलापन होता है ना, रेजिलियंस, उसके बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया।
इसी के बाद उनकी दूसरी किताब आई थी, ऑप्शन बी।
हाँ, ऑप्शन बी, जो दुख से उभरने और मुश्किल हालात में रास्ता खोजने के बारे में थी। आखिरकार 2022 में उन्होंने मेटा यानी फेसबुक छोड़ दिया, ताकि वो अपना पूरा ध्यान अपने फाउंडेशन और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले कामों पर लगा सकें।
ये वाकड़ी एक असाधारण यात्रा रही है, उतार चढ़ाव भरी। अच्छा, अगर हम उनके मूल दर्शन को समझने की कोशिश करें, ये जो लीन इन का कॉन्सेप्ट है, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ये कहता है कि महिलाएं ज्यादा महत्वाकांक्षी बने?
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सैंडबर्ग का जो कोर बिलीफ है वो व्यक्तिगत क्षमता, मतलब इंडिविजुअल एजेंसी में है, कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, लेकिन वो बाहरी बाधाओं को नकारती नहीं है।
मतलब वो मानती हैं कि भेदभाव, पूर्वाग्रह, ये सब असली दिक्कतें हैं।
बिल्कुल, वो कहती हैं कि ये सिस्टमिक बैरियर्स, ये बाहरी बाधाएं बिल्कुल असली हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उनका तर्क ये है कि इन बाहरी बाधाओं के साथ साथ कई बार महिलाएं अंदरूनी बाधाओं की वजह से भी खुद को रोक लेती हैं।
अंदरूनी बाधाएं जैसे?
जैसे आत्मविश्वास की कमी होना, या रिस्क लेने से हिचकिचाना, या सैलरी नेगोशिएट करने में पीछे हटना, या मीटिंग में अपनी बात मजबूती से ना रखना।
अच्छा,
तो लीन इन एक तरह से इन्हीं अंदरूनी बाधाओं को चैलेंज करने का, उन्हें तोड़ने का एक आह्वान है कि सक्रिय बनो, मौके का पीछा करो, अपनी बात रखो, टेबल पर अपनी जगह क्लेम करो। ये इरादे और एक्शन की बात है
कि अगर आप में काबिलियत है और आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही।
हाँ, ये नजरिया काफी हद तक मेरिटोक्रेटिक है और यहीं पर उनकी आलोचना भी शुरू होती है।
हाँ, मैंने पढ़ा इस बारे में। कई लोगों का मानना है कि ये नजरिया उन सामाजिक और ढांचागत बाधाओं को कम करके आंकता है जिनका सामना बहुत सी महिलाओं को करना पड़ता है, खासकर वो महिलाएं जो सैंडबर्ग जितनी प्रिविलेज्ड पृष्ठभूमि से नहीं आती।
ये एक बहुत जायज आलोचना है। और आलोचक ये भी कहते हैं कि जब आप सारा जोर इंडिविजुअल एक्शन पे डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनियों और संस्थानों की जिम्मेदारी कम हो जाती है।
मतलब वो जरूरी बदलाव करने से बच सकते हैं, जैसे बेहतर पेरेंटल लीव पॉलिसी लाना या वेतन में बराबरी लाना।
हाँ बिल्कुल, ये जिम्मेदारी शिफ्ट होने का खतरा रहता है।
हालांकि ये भी कहना होगा कि सैंडबर्ग ने बाद के सालों में इन आलोचनाओं को काफी हद तक स्वीकार किया है और सिस्टमिक बदलावों की जरूरत पर भी जोर दिया है। गांव के मुद्दों पर बोलती रहे, क्या वजह थी?
मुझे लगता है उनमें एक गहरी जिम्मेदारी की भावना है कि उनके पास जो मंच है, जो प्रभाव है, उसका इस्तेमाल बड़े बदलाव के लिए करना चाहिए। वो मानती हैं कि जो महिलाएं सफल हुई हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के लिए रास्ते खोलें,
वो इसे कहते हैं लिफ्ट को वापस नीचे भेजना।
अच्छा फ्रेज है।
हाँ, साथ ही वो काफी यथार्थवादी भी हैं। वो मौजूदा सिस्टम के अंदर काम करते हुए धीरे धीरे सुधार लाने की बात करती हैं।
और उनके पति की मृत्यु, उस अनुभव ने उनके नजरिए को कैसे बदला?
उस अनुभव ने मुझे लगता है उनके नजरिए में एक बहुत गहरी सहानुभूति और जटिलता ला दी। उन्हें पहली बार अकेले कामकाजी माँ होने की चुनौतियों का सीधा अनुभव हुआ।
हाँ, ये तो बहुत अलग अनुभव रहा होगा।
बिल्कुल। इसके बाद कार्यस्थल में लचीलेपन की जरूरत, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत, इन सब पर उनका जोर और भी गहरा हो गया। इसने उनके शुरुआती नजरिए को, जो शायद थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, उसे बैलेंस किया।
उनका मुश्किलों से निपटने का तरीका भी मुझे काफी दिलचस्प लगता है। वो डेटा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस का भी।
हाँ, ये कॉम्बिनेशन उनकी खासियत है। वो प्रॉब्लम को समझने के लिए फैक्ट्स और डेटा देखती हैं, लेकिन साथ ही मानवीय भावनाओं, रिश्तों, इनके महत्व को भी बखूबी समझती हैं। और वो हमेशा एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाने पे बहुत जोर देती हैं
कि अकेले कुछ नहीं होता।
हाँ, कि सफलता अकेले नहीं मिलती, और वो मुश्किलों को एक अवसर की तरह देखती हैं, सीखने का, मजबूत बनने का।
चलिए अब उनके जीवन के उन तीन खास मोड़ों पर आते हैं जिन्होंने उनकी सोच और उनकी दिशा को सबसे ज्यादा बदला। पहला तो शायद गूगल वाला फैसला ही होगा।
हाँ, निश्चित रूप से। 2001 में वो अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़कर एक अनजाने से टेक स्टार्टअप में चली गई। ये बहुत बड़ा कदम था।
इसने क्या सिखाया उन्हें?
इसने उनके इस विचार को पक्का किया कि करियर कोई सीधी चढ़ाई वाली सीढ़ी नहीं है, ये एक जंगल जिम जैसा है।
जंगल जिम मतलब?
मतलब आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, साइड में जा सकते हैं, रास्ते बदलते रहते हैं। उन्होंने सीखा कि सिर्फ प्रतिष्ठा या सिक्योरिटी नहीं देखनी चाहिए, ग्रोथ की संभावना ज्यादा जरूरी है।
जोखिम लेना और नए अवसरों पर दांव लगाना।
हाँ, और ये सीख उनकी लीन इन किताब में भी साफ दिखती है।
ठीक है, दूसरा बड़ा मोड़।
मेरे ख्याल से उनका 2010 का टेट टॉक, जिसका टाइटल था हमारे पास महिला नेताओं की कमी क्यों है।
हाँ, ये टॉक तो बहुत वायरल हुआ था।
बहुत ज्यादा, करोड़ों लोगों ने देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने लीन इन वाले आइडियाज को इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुलकर रखा था।
तो इस टॉक की सफलता ने क्या साबित किया?
इसने दिखाया कि लोग इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जो प्रतिक्रिया मिली दुनिया भर से, उससे उन्हें ये भरोसा मिला कि उनके विचार वैलिड हैं, और शायद इसी ने उन्हें किताब लिखने और फिर पूरा लीन इन मूवमेंट शुरू करने का आत्मविश्वास दिया।
ये एक तरह से उनके कॉर्पोरेट लीडर से ग्लोबल थॉट लीडर बनने का टर्निंग पॉइंट था,
कह सकते हैं। और तीसरा और शायद सबसे गहरा मोड़, उनके पति डेव गोल्डबर्ग की 2015 में अचानक मृत्यु।
हाँ, ये तो यकीनन सबसे मुश्किल रहा होगा।
निस्संदेह ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, इसने उनके प्रोफेशनल नजरिए को भी बदला। इसने उन्हें उन सलाहों की सीमाओं का एहसास कराया जो वो देती थी, जैसे वो हैविंग इट ऑल वाली बात,
सब कुछ पा लेना।
हाँ, जब वो खुद अकेली माँ बनी तब उन्हें काम और जीवन को बैलेंस करने की असल जटिलताओं का सामना करना पड़ा।
तो इस अनुभव ने उन्हें और उनके काम को कैसे प्रभावित किया?
मुझे लगता है इसने उनकी आवाज में एक नई तरह की गहराई ला दी, एक सहानुभूति, एक प्रामाणिकता। उनकी वकालत थोड़ी और सूक्ष्म हुई। ऑप्शन बी किताब तो इसी अनुभव का नतीजा थी। इसने दिखाया कि जिंदगी में कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ लीन इन करके पार नहीं कर सकते। उनके लिए आपको गहरे भावनात्मक सहारे की, कम्युनिटी की और बहुत सारे लचीलेपन की जरूरत होती है। इसने उनके मूल संदेश में एक बहुत जरूरी मानवीय परत जोड़ी।
सैंडबर्ग की इस पूरी कहानी से, उनके विचारों से, आज के समय में हम क्या सबक सीख सकते हैं? कुछ ऐसे मानवीय सबक जो हम सबके काम आए।
कई सबक है। पहला तो ये कि अगर आप सच में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको वल्नरेबल होना सीखना होगा। अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी असफलताएं, इन्हें स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर साझा करना, इससे विश्वास बनता है।
ये बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए।
होता है। दूसरा सबक है सपोर्ट सिस्टम का। सफलता अकेले कभी नहीं मिलती। हमें जानबूझकर एक्टिवली अपने दोस्त, परिवार, सहकर्मी, मेंटर, इनका एक नेटवर्क बनाना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए।
हाँ, ये नेटवर्क बहुत जरूरी है। और एक बात और कि बदलाव के लिए व्यक्तिगत कोशिशें भी चाहिए और सिस्टम में बदलाव भी, है ना?
बिल्कुल। ये तीसरा अहम सबक है। आप सिर्फ एक पर फोकस नहीं कर सकते, दोनों जरूरी हैं। चौथा सबक है कि असफलताएं अंत नहीं होती। वो हमें मजबूत बना सकती हैं, हमें लचीलापन सिखा सकती है, वो सीखने का मौका होती हैं।
और आखिरी
और पांचवा कि जब आप दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं तो असल में आप अपनी सफलता को भी बढ़ाते हैं। ये कंपटीशन वाली सोच से हटकर सहयोग वाली सोच अपनाने की बात है।
ये सारे सबक आज की जो आम दिक्कतें हैं जैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम, मतलब खुद की काबिलियत पर शक करना,
हाँ,
या फिर वर्क लाइफ बैलेंस का स्ट्रगल, या अचानक कोई मुसीबत आ जाना, इन सबसे सीधे जुड़ते हैं।
ये सब चलता रहता है और जब आप इनके बारे में खुलकर बात करते हैं तो दूसरों को भी हिम्मत मिलती है।
अच्छा, अगर इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें तीन मुख्य बातें कहनी हो जो श्रोता अपने साथ ले जा सकें तो वो क्या होंगी? पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि क्या होगी?
मेरे ख्याल से सबसे गहरी भावनात्मक बात यह है कि सफलता के साथ भी एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है, खासकर सफल महिलाओं में, लेकिन पुरुषों में भी। महत्वाकांक्षा और समाज की अपेक्षाओं के बीच एक तनाव होता है। सैंडबर्ग अपनी इतनी उपलब्धियों के बावजूद अपनी अनिश्चितताओं, अपने डर, इम्पोस्टर सिंड्रोम, अपराध बोध, इन सब के बारे में खुलकर बात करती हैं। ये बात उन लोगों से सीधे जुड़ती है जो खुद ऐसे ही दबाव महसूस करते हैं। ये याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं इस संघर्ष में।
ये बहुत रिलेटेबल है। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
बौद्धिक स्तर पर देखें तो सबसे बड़ा सबक ये है कि लैंगिक असमानता या किसी भी तरह की असमानता एक बहुत जटिल समस्या है।
मतलब
इसे ठीक करने के लिए आपको कई लेवल पर एक साथ काम करना होगा। लोगों की सोच और व्यवहार बदलना होगा, कंपनी और संस्थाओं की पॉलिसी और कल्चर बदलना होगा, और समाज की जो उम्मीदें और पूर्वाग्रह हैं उन्हें भी बदलना होगा। ये सिर्फ ग्लास सीलिंग यानी बाहरी रुकावटों का मामला नहीं है, ना ही सिर्फ स्टिकी फ्लोर यानी अंदरूनी रुकावटों का। ये दोनों के मिलने से जो बनता है उसका मामला है।
ये बहुत अहम बात है।
और आखिर में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सब पर लागू हो,
वो है साहस, हिम्मत, अपनी आवाज का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए, पॉजिटिव बदलाव के लिए करने का साहस, भले ही उसमें रिस्क क्यों ना हो। सैंडबर्ग का वो सवाल याद है, यदि आप डरते नहीं तो क्या करते?
हाँ बिल्कुल, वो सवाल हमें यही याद दिलाता है कि डर तो लगेगा, लेकिन डर के बावजूद हिम्मत भरे फैसले लेना मुमकिन है और जरूरी भी है। और ये सिर्फ काम या करियर की बात नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। अपने मूल्यों के लिए खड़े होना, नाइंसाफी के खिलाफ बोलना, दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करना,
अपनी आवाज ढूंढना और उसका इस्तेमाल करना, शायद यही सबसे बड़ा सबक है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।
निश्चित रूप से ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर डर न होता तो हम क्या अलग करते?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।